This is an ABP Life podcast.
दुनिया भर में जून को प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है, मगर समाज का कड़वा सच ये भी है कि प्राइड का हमने अचार बना डाला है। मन में तो हम वही भेदभाव से भरे लोग हैं जो सिग्नल से लेकर के एक अदालत तक में अगर किसी ट्रांस पर्सन को देख लेते हैं तो दूर हो जाते हैं, कई मुंह बना लेते हैं तो कई डर के मारे छुप जाते हैं, मतलब। और ये वही लोग हैं जो प्राइड परेड में नाचने भी जाते हैं। अब भैया खुद को प्रोग्रेसिव भी तो दिखाना पड़ेगा, वरना वोक सर्कल्स में लोग क्या कहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिबा खान और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट ज्ञान वाला पॉडकास्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आज यानी कि शुक्रवार को FII का प्राइड स्पेशल एपिसोड आता है, और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जून को प्राइड मंथ के तौर पर मनाया जाता है। प्राइड मंथ दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया में कई लोगों के साथ रोजमर्रा में कई तरह का भेदभाव होता आया है और आज भी प्रचलन में है। उन्हीं में से हैं ट्रांस पीपल, वो लोग जो ट्रांसजेंडर समुदाय से आते हैं। वैसे तो इतिहास में देखा जाए तो ट्रांस समुदाय को ज्यादातर ऊंचे ओहदों पर देखा गया है, पढ़ा गया है। आप चाहे मुगलों की बात कर लें या उनसे पहले भी आप अगर बात कर लें तो वो किंग्स के कोर्ट्स में एडवाइजर्स हुआ करते थे, वो हरमों में जो रानियां हैं उनको कंपनी दिया करती थी। मगर जब अंग्रेजों का आना हुआ उसके बाद से भेदभाव बहुत बढ़ गया। इस कारण आज ना ही ट्रांस समुदाय शादी कर सकते हैं कानूनी तौर पर, ना बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं और ना ही लोन ले सकते हैं। आज की हमारी मेहमान है जोयता मोंडल। जोयता मोंडल एक ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट तो हैं ही, और बंगाल में लोक अदालत की न्यायाधीश हैं, जी हाँ, जज हैं। वो दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर महिला हैं जो इस ओहदे पर पहुंची हैं। वो लोन और उसके लेन देन के केसेस सुनती हैं, मगर कानून के हिसाब से वो खुद लोन नहीं ले सकती, और ये भी उनकी दिक्कतों में शायद कहीं नीचे के पायदान पर आता होगा उनकी जिंदगी में, क्योंकि कई तूफान आए मगर वो सबसे निपट कर आगे बढ़े और आज एक जज हैं। आइए उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि वो कहां से आ रही हैं, उनकी फैमिली कैसी रही है, जितनी भी उनकी जिंदगी में अड़चनें आई हैं, दिक्कतें आई हैं, उनका उन्होंने सामना कैसे किया, क्योंकि हमारा इस बार का प्राइड मंथ का फोकस क्या है। जी हाँ, चोजन फैमिली, जो लोग आपको आपकी फैमिली से बाहर मिलते हैं और जो आपका परिवार बन जाते हैं। वेलकम जोयता जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट FII।
थैंक यू सो मच आपको और आपके पूरा टीम को, या जो श्रोता लोग सुन रहे हैं उनको भी, कि उसको भी वक्त निकले है हमारा बात सुनने के।
कैसा लगा आपको जब इतनी बड़ी, मतलब, अचीवमेंट आपने किया, वो भी इतनी कम उम्र में?
एक्चुअली सच बोले तो मेरे को भी कभी कभी यकीन नहीं होती है कि वो साथ में पढ़ाई भी स्टार्ट की हो, बहुत सारा स्ट्रगल आया, अप एंड डाउन होने लगा, बट एट लास्ट मोमेंट पे मेरे को वो जो सोशल वर्क, मैं एक सोशल वर्कर भी और इस हिसाब से अच्छा लगता है जब मैं हम बात करते हैं सबसे, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, कभी कभी किसी को पता भी नहीं चलता है जब कोर्ट पे बहुत सारे ऐसे इंसान भी आते हैं जो खुद आके बोलते हैं कि अगर जज को आने तो उसके बाद मैं मेरा बात को बताएंगे, तो मेरा लॉयर्स वो लोग बोलते हैं कि जज मैडम तो बैठी है उनको बताओ, तो वो लोग यकीन नहीं होते कि कैसे बन गए। तो मैं ये कभी अलग रूप से नहीं लेती हूँ, लेकिन ये मैं ये लेती हूँ कि सोसाइटी में अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है और सोसाइटी में कुछ चेंजेस भी जैसे आ रही है, अगला तो और भी चेंजेस आ जाएगा। लेकिन ख़राब की चीज़ अगर ऐसे लगता है कि मैं बेसिकली जो लोन डिपार्टमेंट है मैं उसके जजमेंट करती हूँ, जैसे बैंक लोन, कार लोन, कोई लोन लेना है, कोई लोन ठीक से नहीं दे रहा है, तो इसका मैं परमिशन भी देती हूँ और इसके मैं पनिशमेंट भी मैं करती हूँ। लेकिन मुझे खराब ये लगता है कि हमारा हक नहीं है लोन लेने, एज ए ट्रांसजेंडर आज का डेट में भी मैं कहीं जगह से लोन नहीं पाऊँ, क्योंकि वो अगर मेरे को मिल भी जाते हैं तो मेरा बच्चा जो ट्रांसजेंडर उन लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर को अभी तक बैंक लोन की कोई परमिशन इतना है नहीं। तो यही मुझे खराब लगता है, मैं किसी को परमिशन कर रही हूँ, किसी को मैं पनिश कर रही हूँ, बट मेरा बच्चा या मेरा कम्युनिटी का कुछ केसेस या मेरा कम्युनिटी का कुछ इश्यूज जो मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही, तो बहुत बार ये भी मुझे सुनने में मिला है कि आप तो ट्रांसजेंडर का जज हो ना, तो मैं उसको पूछा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ट्रांसजेंडर का कभी तो कोई ट्रांसजेंडर आती भी नहीं है मेरा लोक अदालत पे, क्योंकि उसका कोई स्कोप ही नहीं है आने का, तो ये खराब लगता है। बट एज ए नॉस ये एक अच्छा एडवोकेसी हुआ है, एक अच्छा सेंसिटाइजिंग पे भी हुआ है। अभी इंडिया में बहुत सारा ट्रांसजेंडर को जो मौका मिल रहा है, बहुत दिनों से उस कुर्सी का हकदार बहुत ट्रांसजेंडर थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुर्सी किसी को कभी दिया गया नहीं है। लेकिन जब 8 जुलाई 2017 को मुझे दी गई है, तो मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं पहला हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को सुनने में आया कि इंडिया में एक ट्रांसजेंडर साहब तो कोई नहीं बैठे, जो मीडिया वाले हैं, जो जो एक्टिविस्ट जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, सीनियर एक्टिविस्ट जो लोग हैं, सभी बोला कि आप ही पहले, तो ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं देख रही थी बॉम्बे में बोलो या दिल्ली में बोलो या कलकत्ता में बोलो, हर जगह पे ट्रांसजेंडर को बिठाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, एक सेंसिटाइजेशन भी हो रही है और कम्युनिटी को एक्सपेक्टेशन भी मिल रही है, तो वैसे ही लगता है अभी एज एन एस
जी। ज्वेता जी, तो आपने मतलब बहुत ही एक आयरनी वाली बात है, मतलब ये तो मदर ऑफ ऑल आयरनीज है कि आप देखती हैं कि लोन किसने लिया है, कौन पे कर रहा है, रीपे कर रहा है, नहीं कर रहा है, और आप लोग ही लोन नहीं ले सकते। तो आई होप सरकार ये सुन रही होगी, आई होप हमारे जो श्रोता हैं वो ये सुन रहे होंगे कि कितनी बड़ी आयरनी है अपने आप में। ज्वेता जी, जो हमारा पॉडकास्ट है ना, उस पर हम इस बार फोकस, वैसे हम साल भर में बहुत सारा एलजीबीटी के ऊपर कंटेंट निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनमें से हैं कि हम एक महीना ले लेते हैं कि जो प्राइड का महीना है उसी में हम कुछ करेंगे, पूरे साल भर हम करते रहते हैं। तो उसी पे हमारा जो इस बार का फोकस है वो ये था, द चोजन फैमिली, क्योंकि जो बहुत एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है, स्पेशली जो ट्रांस कम्युनिटी है, वहाँ से क्या होता है कि आपके जो खुद के परिवार वाले हैं वो आपका बहुत बार साथ नहीं देते हैं, आपकी आइडेंटिटी पे बार बार क्वेश्चन करते हैं, नेबर्स क्वेश्चन करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पर। तो फिर क्या होता है कि जो लोग हैं जो अपने आप को अकेला पाते हैं, तो वो बाहर जा करके वो सपोर्ट लेते हैं अपनी चोजन फैमिली से, कि भाई किसी ने किसी को अपना भाई मान लिया, लवर मान लिया, माँ मान लिया, गुरु मान लिया। तो उस पर हम ज़रा थोड़ी
बात करेंगे कि आपकी चोजन फैमिली कौन है। अपना जो डेरा है, हमारा जो गुरु से, उसके पास ही मेरा काम भी स्टार्ट हुआ, बेगिंग स्टार्ट किए मैंने, फिर पढ़ाई किए। तो अगर मेरा अपना अगर मैं बताऊँ तो मेरा सबसे एल्डर जो सिस्टर है, बड़ी जो दीदी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है फैमिली से। जब मैं छोड़ के भी आ गई, मम्मी पापा का कोई कॉल्स नहीं था, मम्मी पापा का कोई मैं कहा हूँ क्या कर रही हूँ, जी हूँ या मरी हूँ, उसमें उन लोग का कोई भी कभी भी कुछ नहीं देखा। बट मेरा एल्डर सिस्टर जो है, वो सिस्टर मुझे हर टाइम वक्त मेरा साथ दिया है। और साथ ही साथ मेरा डेरा का जो मेरा जो गुरु है, गुरु ने मुझे बताया कि आप पढ़ो, आप पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये भी देखते हैं कि गुरु में बहुत टॉर्चर भी होते हैं, हर टाइम ये सब बोलते हैं कि एक स्टिग्मा भी गुरु के घर भी होती है, एक स्टिग्मा, तो उसको भी लेकिन मेरा घर पे, मेरा गुरु के घर पे कभी मेरा को ये स्टिग्माइज भी नहीं मिला, मेरा गुरु का कभी ये भी नहीं मिला। तो आज का डेट में मेरा फैमिली, मेरा कम्युनिटी है, क्योंकि मेरा भी अभी बच्चा है, मुझे कोई नानी बुलाती है, कोई मम्मी बुलाती है, मैं किसी को नानी बुलाती हूँ, किसी को मम्मी बुलाती हूँ। तो ये कम्युनिटी मेरा फैमिली है, साथ ही साथ मेरा गुरु मेरा फैमिली से है, और अभी मेरा फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता हो गया है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी हूँ। एक्चुअली ये बात बहुत लंबी है, बट मैं छोटी से बोल रही हूँ। मैं जब घर से छोड़ के चली आई थी, तब तो पैसा होने के खातिर भी मेरा कोई होटल नहीं मिला, कुछ खाना नहीं मिला, तो बहुत टाइम मैं ट्रेन स्टैंड पे, बस स्टैंड पे या जो रेलवे स्टेशन है उसमें रात गुजर रही थी। उसके बाद जो ट्रेन पे जब बेगिंग करने जो लोग आते थे, तो उन लोग मुझे हर टाइम देख रहे थे, 2-4 दिन ऐसे करके। तो देखने के बाद वो लोग मेरे पास आए, मेरे से बात किए, तो मैं उन लोग का बोली कि मेरा यही प्रॉब्लम है, तो बोला चल हमारा घर जाके तो रह सकती है, मेरा गुरु भी है उधर, तो जा सकती है। तो मैं देखो फर्स्ट में एंट्रेंस किया 2009 में, मैं जब दयार में गई, जो दयार होती है हमारा गुरु का जो घर है, तो जाने के बाद मैं अच्छी बातचीत हुआ, तो मेरे को ये बहुत अभी मुझे को बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं जब बचपन में पैदा हुई थी, मेरा वो गुरु ही मेरे को घर गई थी मेरे को पैसा लाने के लिए। तो ये भी मुझे बहुत एक अच्छा सा फील होती है। लेकिन उस गुरु के साथ मैं कलकत्ता में भी बहुत बार हुई, वर्कशॉप में गई बहुत बार टाइम भी, मैं उसको देख कर चौंक गई कि आप, बोला हाँ मैं ही इधर का गुरु हूँ। तो तो अच्छे ने अनफॉर्चुनेटली उधर मेरा एक अच्छा रिश्ता भी बन गया, क्योंकि जब मैं बचपन की थी तब जब मेरा गांव में या जब शहर में जब जाती थी वो लोग, तो हम भी उसके पीछे पीछे छुप छुप के इस घर में बच्चा हुआ है, इस घर में शादी है, मैं ये सब बताती थी उन लोग को, तो एक अच्छा रिश्ता हुआ था उनके साथ। फिर जाके उसके बाद तो उसने मुझे बोला कि चल तू मुझे गुरु मत बोल, तू मुझे दीदी बोलना, ठीक है, तो तू मेरा बहन है। तो लेकिन हमारा जो रिचुअल्स है, हमारा जो रीति रिवाज है, तो उसमें तो हमारा वो मेरा गुरु बन गई। तो फिर उसने मुझे बताया कि देख अभी को फिलहाल अगर तू नया नया है तो अभी अगर तू कुछ काम नहीं करेगी तब तो सभी मुझे के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि वो नया आए हैं, और ये एक रिचुअल्स है कि जो पहले आती है वो बड़ी होती है, जो उसके बाद आती है तो उसका गुरु का चेला का चेला होती है, ऐसे करके होती है। बट जब मैं उसने खुद मुझे को उसका चेला मान लिए तो मैं मेरा काम करती थी, देखी करती थी। फिर रात को जब सोती थी गुरु मुझे बोलते तुझे क्या करना है बोल, मुझे पता है तुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तब मैं क्लास HS कंप्लीट किए, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट थी तब, मैं छोड़ के चली गई थी कलकत्ता से। तो बोला कि मैं बोला मुझे फिर से पढ़ना है, तो बोला हाँ चल पढ़, जितना खर्चा है खर्चा हम देंगे, या तो हमारा रिचुअल्स में जो हम कमाते हैं, जो हम पेगिंग या जो पैसा अर्न करते हैं उसमें से गुरु को कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको हकदार गुरु भी है कुछ पैसे की। तो मेरा गुरु वो पैसा नहीं लेते थे मेरे से, तो मत दो मुझे ये पैसा, तो अपना पढ़ाई लिखाई की मैं ध्यान रख, तो अपना इसमें ध्यान रख। तो ऐसे करते करते देन उसके बाद तो मेरा संस्था फॉर्मेशन किए, फिर राइटर्स बेस काम करने स्टार्ट किए, तो गुरु को अच्छा लगने लगा। जिस दिन मैं कोर्ट पे जा रही थी गुरु इतना रो रही थी कि पता नहीं वो पकड़ के मुझे रोके बोल रही थी कि काश उस दिन तू मेरे पास नहीं आता तो तू सुसाइड कर लेते। फिर ओके ऐसा हो गया था, मैं क्योंकि मैं लगभग 7 से 10 दिन तक मैं कुछ नहाया नहीं, इतना खाना भी नहीं खाए, तो स्टेशन पे रास्ते पे जब रह रही थी मुझे ये लग रहा था कि मेरा जिंदगी खराब है, मुझे कहीं जाना है। बट उस जगह से जब मैं गुरु के घर चली गई तो आज का डेट में तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मेरा पीछे का जो भी सपोर्ट है, मेरा गुरु अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते उस टाइम की बात मैं बताती हूँ, उस टाइम अगर गुरु मुझे नहीं बोलते तू पढ़ाई कर, तू तेरा संस्था फॉर्मेशन कर, तो आज का डेट में मैं ऐसे जोईता कभी नहीं बन पाती, और मेरा इतना बच्चा भी मेरे पास नहीं होती है। और अभी भी मेरा गुरु ये बताती है कि तेरा जितना भी बच्चा है सबको पहले तू पढ़ाई लिखाई सिखा, उसको पढ़ने बोल, पढ़ने के बाद अगर कोई जॉब मिलते तो जॉब करने के बोल, अगर उसका पैसा का बहुत ज़रूरी है तो मेरे घर में भेज दे, 1-2 महीना 6 महीना 1 साल काम करने दे, उसको पैसा आ जाएगा, उसको कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोल। तो मेरा गुरु का कॉन्सेप्ट कुछ अलग टाइप का था, तो काश भगवान ने मुझे मिला दिए थे उनके साथ, तो मैं भी मिल गई उनके साथ, और अभी भी तो चल रही हूँ मैं गुरु के साथ, लेकिन मैं देरा में अभी नहीं रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ।
जिस फैमिली में आप रहती थी उसके बारे में अगर आपको हमसे कुछ बात करनी हो, जैसे आपकी फैमिली, आपकी सिस्टर सपोर्टिव थी, लेकिन आपके मम्मी पापा के साथ आपके किस तरीके के रिलेशनशिप?
मैं कलकत्ता में जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, मेरा 2 एल्डर सिस्टर है, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। लेकिन जन्म होने के बाद मम्मी पापा का तो ये मुझे लड़का की तरह रहना है, लड़की की तरह बात करना है, लड़की होके बन के रहना है, लड़का होके बन के रहना है, ये लोग का ये उम्मीद था। लेकिन मेरे को अंदर और मन और शरीर तो एक नहीं था मेरा कभी भी। तो मेरे को इतना बहुत टाइम हुआ, मम्मी बहुत बार पिटाई की है मेरे से बचपन में, मैं जब छुप छुप के साड़ी पहनती थी, ज्वेलरी वगैरह पहनती थी, तो मम्मी ने मुझे बहुत पिटाई किए, बहुत कुछ बताया कि ऐसा करने से सोसाइटी में हमारा इज्जत चल जा रहा है, सोसाइटी में ये दिक्कत है। लेकिन पापा हर टाइम साइलेंट रहते थे। लेकिन जब मेरा उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा था तो मेरा शरीर में कुछ अलग अलग चेंजेस भी आ रहे थे उस टाइम, कपड़ा का ढंग, आईब्रोज करना, बाल बनाना, ऐसा चेंजेस आ रहे थे। तब मम्मी ने बोला कि अभी तो हक से ज़्यादा हो रही है। तो बहुत बार ऐसे भी हुआ, मुझे साइकेटिस्ट के पास ले गई थी मम्मी, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए थे मुझे कि मैं ठीक हो जाऊँगी, कुछ ने बताए थे कि इसका मेंटली कुछ डिफेक्टेड है, इसको थोड़ा ये शॉक वगैरह लगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये सब बहुत कुछ मेरे साथ अप एंड डाउन होने लगा। स्कूल में मैं जब बॉयज स्कूल में मुझे एडमिशन दे दिए थे जब क्लास 9-10 में मैं पढ़ रही थी, तब 2-4 लड़का ने मुझे वॉशरूम में ले जाके सेक्सुअल अब्यूज भी किए, मुझे बहुत सारा ब्लीडिंग भी हुआ। फिर मैं जब मम्मी को जाके मैं बोल रही थी कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, मम्मी बोला कि तुम ऐसे रहोगे तो ऐसा ही होगा, सही किए जो किए, मेरा जो गलती नहीं थे उस टाइम, मैं क्या करूँ, तो ये कभी भी समझा नहीं मम्मी पापा ने। कभी ऑकेशन भी मुझे नहीं ले जा रहा था, अगर घर में कोई मेहमान आ रही तो मम्मी मुझे बोलते थे तुम मत बाहर आ। तब जाके मैं सोचा कि मुझे अभी तो घर से निकलना है। लेकिन जब HS के बाद मैं सोचा अभी कॉलेज में जा रही हूँ, कुछ अच्छा नौकरी भी मिल जाएगा, तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम के लिए स्टार्ट किए थे कॉल सेंटर पे। बट उधर जाके तो और भी परेशान है, लड़के लोग का अलग वॉशरूम है, लड़की लोग का अलग शो मैं जाऊँ कहा। टिफिन का टाइम भी उधर भी लॉबी बाजी चलते थे। अगर मैं कोई कस्टमर ज़्यादा ले लेती थी उस टाइम वो कॉल पे कोई लोन वगैरह में, बैंक में मैं थी तो मैं जब लोन ज़्यादा लेती थी, अगर मेरा सीनियर मुझे आके सबके सामने बोलते थे बहुत अच्छा काम किया आपने, तो सभी कॉलिग मुझे ये बताते अरे वो तो छक्का है वो कैसे नहीं काम करेगा। तो वो टोनिंग जो है सबके सामने, वो जो सबके पूरा हॉल के माहौल में टोनिंग मुझे बहुत खराब लगता था। मैं 2 महीना वो जॉब भी छोड़ती है। तो उसके बाद मैं बोलूँ मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, अभी घर में रहना है तो मेरा कुछ नहीं करना है। और मैं जब 2009 में जब मैं जुलाई मंथ में घर छोड़ती थी 2009 में, मेरा 4 सहेली मेरा दोस्त जो कम्युनिटी से वो लोग सुसाइड भी कर लिए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे को रहना है घर में तो मुझे मर जाना है। और मैं तो कभी वो कपड़ा पहन के लड़का तरह रह के शादी करके ये हम कभी भी नहीं कर पाते, कभी भी मेरा मन में तो है ही नहीं मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। तो इसी के कारण मैं डिसीजन ले लिए थे मुझे अभी छोड़ के जाना है। मम्मी पापा ने मुझे बहुत बार बोले कि तू कहाँ जा रही हो, बोल के जाओ तू कहाँ जा रही। मैं बोला मेरा एक नौकरी मिली है नॉर्थ बंगाल में मुझे जाना है। तो वो बोल के मैं चली आई, लेकिन कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं। लेकिन आने के बाद घर से उन लोग को पता चला कि मैं बेगिंग कर रही थी ट्रेन पे या सिग्नल पे खड़ी हो रही थी या शादी बच्चे होने घर जा रही थी, तब वो लोग पूरा कॉन्टैक्ट छोड़ दिए थे। सबके सामने में ये सुनने में आ रहा था कि मेरा बच्चा मर गई है। तो ये सुन के भी मैं कुछ नहीं किए, मेरा जो काम है, मेरा जो एल्डर सिस्टर मुझे कॉल करती थी, मैं उसको हर दिन मम्मी के बारे में पूछती थी, पापा के बारे में पूछती थी, कभी कभी उनको ये बोलती थी तुम एक बार मोबाइल बगल में ले जाओ उसकी वॉइस मुझे सुनना है, मेरे से बात नहीं करना है उसकी वॉइस मुझे सुनना है। तो ये जितना सारा अंदर में झेल रही थी उस टाइम। बट जब मैं लोक अदालत में बैठ गई 2017 में, उसके बाद जब मेरा टेडेक्स से लेकर बहुत सारा कार्यक्रम पे मैं आ गई, न्यूज़पेपर में आई, फिर लास्ट बार मुझे वो वुमेन्स अवार्ड भी मिला 2018 में जो केजरीवाल सर खुद दिए थे मुझे अवार्ड। तो ये सब होने के बाद फैमिली वालों में मीडिया इधर उधर बहुत जगह से सुनने में आया। तब जाके वे एक बंगाल में एक रियलिटी शो भी होते हैं जिसमें मैं लड़की का रियलिटी शो में मैं गई थी, मुझे ऐसे बुलाया गया था उधर में। तब मम्मी वो रियलिटी शो देखने के बाद मम्मी रो रही थी। तब मम्मी मुझे फिर से 10 दिन बाद मुझे मम्मी मेरा एल्डर सिस्टर बोला से आपसे मम्मी कुछ बात करना चाहती है। तो मम्मी को मैं बोला हाँ बोलो मम्मी। तो मम्मी रो के बोल रहे तू ये बात क्यों बोले कि मैं कभी भी घर नहीं आना चाहती। तो मैं मम्मी को ये बात बोले कि मैं 8 साल से कहाँ हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। अगर मैं जब घर में थी मैं तब मैं सबसे छोटी थी, मेरे को अच्छा खाना सबसे ज़्यादा खाना मुझे मिलती थी, अच्छा फ्रेश वाला मछली मुझे मिलती थी। लेकिन मैं 8 साल जब घर से छोड़ गई तब आपको दिमाग में ये नहीं था कि मैं कहाँ हूँ क्या करूँ। तो मम्मी रो रही थी, मैं सोचा चलो मम्मी है, अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोलने भी आती है मम्मी के पास, मम्मी सिर्फ एक ही बात बोलती मुझे पता है सब कुछ करती है क्या नहीं करती, लेकिन हाँ वो चोरी नहीं करती है, वो गुंडागिरी नहीं करती, कोई खराब काम नहीं करती है, जो करती है इज्जत से करती है, जो कमाती है इज्जत से कमाती है, और हमारा बच्चा है हम उसको खिलाते हैं, अभी वो हमको खिलाती है बस ये इनफ। तो ऐसे गया बहुत टाइम मेरा फैमिली के साथ, लेकिन अभी मैं फैमिली में एक्सेप्ट हूँ, फैमिली के साथ हूँ, लेकिन मेरा रिलेटिव के साथ मैं एक्सेस नहीं हूँ, रिलेटिव के साथ मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, उन लोग का कोई ऑकेशन में भी मैं अटेंड नहीं होती हूँ क्योंकि उधर भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाती है आज का डेट पे भी। पापा कभी भी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पापा उस दिन का पापा का वो जो बात थी कि अगर तुम्हें रहना है तो रहो नहीं तो घर छोड़ के चली जाओ, तो वो उस दिन मुझे वो बहुत हार्ट हुआ था जब मैं वो सेक्सुअल अब्यूज होने के बाद मम्मी ने बोला सही किए हैं, पापा ने बोला तुम घर छोड़ के चली जाओ, अगर रहना है तो सही से रहो नहीं तो ऐसे रहोगे तो घर छोड़ दो। तो मैं इसी के कारण मैं उस दिन घर छोड़ती थी, और आज भी मैं मम्मी को ये बोलती हूँ कि ये घर तो पापा का है मेरा नहीं, तो मैं क्यों रहूँ, ये भी मेरा होटल है, जैसे मैं होटल पर रहती हूँ ये भी मेरा होटल है। लेकिन वो मुझे बहुत हार्ड किए है उस बात, और मैं जिस दिन तक मैं हूँ जी मैं ये कभी भी मैं ये मिटा नहीं पाऊंगी कि उस दिन की वो बात मुझे अभी भी याद आती है। मैं घर जाती हूँ, घर में 2 दिन रहती हूँ, 4 दिन रहती हूँ, अपना खाना खुद बनाती हूँ, सबके साथ मिलती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, आपका अपना सब सामान मैं घर ले जाती हूँ, शैम्पू से लेकर सब कुछ घर ले जाती हूँ, मैं अपना यूज़ करती हूँ, अपना चली जाती हूँ, लेकिन जस्ट वही मुझे प्यार लगता है मम्मी पापा है।
I would salute you for the journey that you have had. Jayita, आप इस समय क्या expect करती हैं सरकार से कि वो क्या कमियां हैं? जैसे for example एक transgender bill निकला था, उसमें कई flaws हैं, कई कमियां हैं, आप तो law पढ़ी हुई हैं और आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से उसके बारे में शायद ही अभी कोई बात कर पाए, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगी क्या कि क्या flaws हैं उसमें, क्या suggestions हैं आपके?
Actually देखिए जब 2014 में नलसा का verdict मिला है, उसके बाद जब हमारा टीजी बिल पहले का जो बिल आया था 2018 के लगभग, तो उस बिल में बहुत सारा कुछ इश्यूज थे, जैसे बेगिंग में, जैसे बधाई में, जैसे इसमें बहुत, लेकिन वो जब चेंज करके फिर से जब आएंगे, आज का अगर मैं बिल देखूं तो बिल में मुझे सही तो है बहुत सारा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दो चार चीज और भी होना चाहिए थे। जैसे हमारा मैरिज राइट्स के बारे में अगर बात बताएं कि मेरे को तो आइडेंटिटी मिल गई है, मेरे को अभी SRS भी हो रही है, मैं जब लड़की बन जा रही हूँ तो लाइफ में किसी को साथ तो अपना लाइफ बिताना जरूरी है। अगर प्यार का लीगलेशन हो गई है 377, लेकिन शादी का भी तो रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये एक शादी का बात है, एक अडॉप्शन की बात है, अडॉप्शन की बात है। अगर मैं अकेली रहती हूँ, अगर मैं कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ तो एक बच्चा भी जी जाएगा और हमारा साथ हमारा भी कोई एक मिल जाएगा सपोर्ट की कार्टर जी। हाँ, अब जब मेरा उम्र बढ़ जाएगी तब मेरे को कौन देखभाल करेगा, ये सभी सोचते हैं ना, मम्मी पापा भी सोचते हैं, सभी लड़का लड़की सभी सोचते हैं कि इसको क्या करना है। और थर्ड टाइम जो है हमारा वो जो लोन वगैरह की जब मैं बात कर रही थी कि हमारा लोन की बहुत क्योंकि हम अगर कहीं जगह पे घर लेना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसको भी एक एक्सेबिलिटी होना ज़रूरी है। और लास्टली तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के लिए। अगर रिजर्वेशन है तो हमारा हर जगह हर चीज़ मिल जाएगा। अगर 1% भी हो जाए, 2% भी रिजर्वेशन हो जाए, उसमें क्या होगा ना, उसमें जैसे हमारा समाज में अगर संविधान हम देखें तो उसमें लड़की का भी रिजर्वेशन है, लड़कों का भी रिजर्वेशन है, ST OBC हैंडिकैप बहुत सारा का थोड़ा करके रिजर्वेशन है। लेकिन ट्रांसजेंडर का कुछ रिजर्वेशन मिल जाए, एक इतना परसेंटेज है, तो क्या होगा ना, कोई ना कोई ट्रांसजेंडर उधर पे रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा, अगर मैं रहूँ या ना रहूँ जो भी, तो कोई ना कोई रहेगा। जैसे अभी इलेक्शन चल रही है, जैसे MLA MP बन रही है, जैसे लोकसभा हो रही है, राज्यसभा हो रही है, जहाँ पर ये TG बिल वगैरह लेके बात चल रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर कौन है? अगर जो MP MLA बात कर रही है वो सुन के बात कर रही है, लेकिन हमारा जो अंदर की जो फील है, हमारा जो अंदर की जो
स्टेक होल्डर जो है, जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है जिनके लिए बनाया जा रहा है, वही टेबल पर नहीं है, तो फिर पॉइंट क्या है जी?
वही हमारा ऐसे लगता है। फिर जाके हम देखें तो अगर एजुकेशन सेक्टर बोलो या हेल्थ डिपार्टमेंट बोलो, हेल्थ डिपार्टमेंट लड़ फीमेल वार्ड है, मेल वार्ड है, कितना ट्रांसजेंडर वार्ड है, वॉशरूम कितना ट्रांसजेंडर वॉशरूम है। तो ये जो हाइजीनिक की बात बताए, अगर हमारा जो ह्यूमन लॉज, जो हमारा जो मौलिक अधिकार जो हमारा है, खाने का, रहने का, स्वास्थ्य का, ये कहीं जगह पे जाके आज का डेट में लग रहा है कि अलग सिस्टम से हो रहा है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक हो रही है, बट वेयर इज इंडिया पूरा, अगर पैन इंडिया हम देखें तो इंडिया में एक जैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चार पांच चीज मुझे के लग रहा है जो बिल में एड ऑन होना जरूरी है आज का डेट में, नहीं तो हमारा ट्रांसजेंडर को बहुत सारा इश्यूज भी आ जा रहे हैं।
जोयदा जी ने इस समय हमें बता दिया है कि ट्रांसजेंडर बिल में उन्हें क्या क्या फ्लॉज लगते हैं, वो खुद लोकल अदालत के जज हैं, आप सब तो समझ ही रहे हो, एक तरफ वो खुद एक स्टेक होल्डर हैं और दूसरी तरफ वो खुद एक जज भी हैं, तो उन्हें लॉ की भी समझ है, हर चीज़ की समझ है उन्हें। आई थिंक मेरे सवाल यहाँ पूरे हो चुके हैं जोयदा जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड टॉकिंग टू अस। आपने इतनी खुलकर और इतने बेहतरीन, इतने आर्टिकुलेट तरीके से आपने हमसे बात की और हमें बताई अपनी जिंदगी के बारे में, कच्चा चिट्ठा हमको बताया, हम पर इतना भरोसा किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट।
थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी।
तो ये थी जोयदा मोंडल, जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी के बारे में कई बातें कही जो हमें इंटरनेट पर देखकर या उनके शायद इंटरव्यूज भी देखकर पता नहीं चल सकती थी। और यही है ऑडियो पॉडकास्ट का सबसे बड़ा फायदा, आप बेझिझक बात कर सकते हैं बगैर किसी और इंसान या चीज की चिंता करें। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अब अगले FIM में मिलूंगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें BP लाइव पॉडकास्ट।
दिस इज an ABP लाइव पॉडकास्ट।